SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। भीषण गर्मी के बाद अब भारत के लोगों को अत्यधिक बारिश की मार झेलनी पड़ रही है। गत शुक्रवार और शनिवार राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों को बारिश का कहर झेलना पड़ा। शुक्रवार को दिल्ली में पिछले 88 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कुछ ही घंटों में 228 मिलीमीटर बारिश हुई। इस बारिश के चलते कई इलाके पानी में डूब गए और जान माल का नुकसान भी झेलना पड़ा। बारिश ने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों के ही दावों की पोल खोल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए प्रगति मैदान अंडरपास में भी भारी जलभराव देखा गया। बारिश के चलते दिल्ली में अब तक कुल 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें से 4 बच्चों की मौत डूब जाने से हुई। बारिश के कहर ने भारतीय सेना तक को नहीं बख्शा। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के साथ सटे दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में बादल फटने की वजह से श्योक नदी में आई बाढ़ में T-72 टैंक के बह जाने से 1 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत 5 जवानों की मृत्यु हो गई। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अगले 2-3 दिनों में बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी है। आज 1 जुलाई से भारत में 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने जा रहे हैं। ये नए कानून ब्रिटिशकालीन इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। सरकार का कहना है कि इन नए कानूनों से जनता को लाभ होगा। इनसे एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी जिसमें 0 FIR, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, SMS मोबाइल फोन पर संदेश के जरिए समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इन 3 नए कानूनों के बारे में जानकारी दी।
ये तीनों कानून 1 जुलाई से कल से लागू हो जाएंगे। हमने पूरे देश में जागृति लाने के लिए, स्टेक होल्डर को अवेयर करने के लिए कुछ कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमारी ये लास्ट कॉन्फ्रेंस आज मुंबई में हुई है। इसमें फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल चंद्रचूड़ साहब आए थे और आप देख रहे होंगे कि हर कॉन्फ्रेंस में 3-4 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी आते हैं। वो टेक्निकल सेशन को हेड करते हैं और जितने भी टेक्निकल बिंदु आते हैं उनको हम नोट करते हैं, जो भी सुझाव आते हैं उनको हम नोट करते हैं। सरकार बहुत संवेदनशील है, बहुत लंबा कंसल्टेशन करके इन 3 कानूनों को लाया गया है। देश की परिस्थितियाँ के लिए आवश्यक था, टेक्नोलॉजी में इतना डेवलपमेंट हो गया उसके लिए आवश्यक था और फॉरेंसिक साइंस में इतना डेवलपमेंट हो गया है इसलिए आवश्यक था।
इन नए कानूनों की वकालत करते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि ये भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हैं।
हाँ, ये एक आप देखिए कि जब इंडियन पिनल कोड आया था तो उसका काम था कि नागरिकों को दंड दे, इसलिए वो भारतीय दंड संहिता। और वर्तमान सरकार का भाव है कि नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता है। तो आपको स्पिरिट समझनी पड़ेगी और नागरिकों की सुरक्षा के लिए, नागरिकों को न्याय देने के लिए ही ये तीनों कानून लाए गए।
लेकिन इन कानूनों के प्रभावी होने से पहले ही कई वकीलों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों और विधि शिक्षाविदों ने चेताया है कि इनमें बहुत सारी कमियां हैं जिनके चलते पुलिस को अवांछनीय ताकत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन लोकुर और जाने माने वकील प्रशांत भूषण सहित कई विद्वानों का मानना है कि नए कानूनों की धाराओं को भली भांति समझने में ही न्यायाधीशों, सरकारी अधिकारियों और वकीलों को 4-5 साल लग जाएंगे, जिसकी वजह से अदालतों में 4.5 करोड़ लंबित पड़े मुकदमों में और इजाफा होगा। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में हुई धांधली की परतें लगातार खुलती ही जा रही हैं। बिहार और झारखंड में कई गिरफ्तारियां करने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने रविवार को गुजरात स्थित गोधरा के जय जलाराम एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन दीक्षित पटेल को गिरफ्तार किया। इसके कुछ ही घंटे पहले अदालत ने चार अन्य आरोपियों तुषार भट्ट, पुरुषोत्तम शर्मा, विभोर आनंद और आरिफ वोरा को चार दिन की रिमांड दी थी। इन अभियुक्तों पर दूसरे राज्यों के परीक्षार्थियों से लाखों रुपए लेकर बेईमानी से नीट परीक्षा बढ़िया मार्क्स के साथ उत्तीर्ण करवा अच्छे कॉलेजों में MBBS डिग्री कोर्स में एडमिशन दिलवाने का आरोप है। श्री पटेल की गिरफ्तारी गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल द्वारा एक प्रेस वार्ता में उन पर गंभीर आरोप लगाने के बाद हुई। श्री गोहिल ने कई फोटो और साक्ष्यों का हवाला देते हुए जय जलाराम एजुकेशन ट्रस्ट और भारतीय जनता पार्टी में साठ गांठ के आरोप लगाए थे। शुक्रवार को संसद में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नीट मसले पर हंगामा होने के कारण संसद की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई, लेकिन गोधरा खुलासे के बाद आज सोमवार को भी नीट मसले पर हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष हर हाल में नीट एग्जाम में हो रही धांधली पर व्यापक चर्चा चाहता है, जबकि सरकार इस मसले पर अलग से चर्चा नहीं होने देना चाहती। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर नीट पर चर्चा ना होने देने का आरोप लगाया।
Yesterday in the opposition meeting, I personally raised this issue and I said, look, to send the message to the students that we care for them, we believe in them, they are the future. We need to spend one day discussing NEET. And there was a unanimous agreement among all opposition parties that yes, a discussion on NEET, a one day discussion on NEET is required and should be done. I tried to raise it in Parliament. Of course, as you saw, I wasn't allowed to speak. It's unfortunate that the government didn't want this. It seemed to me that the direction was directly from the Prime Minister. It's sad that the Prime Minister of India, who in fact should be leading the discussion and should be telling us about his opinion and should be telling us about what he is going to do, simply doesn't want to debate.
संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर सफाई दी।
हमने सरकार की तरफ से बताया कि हर मुद्दे जो भी उठाएंगे उसका हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे, सदन में बात रखेंगे, सदस्यों को हम फिर से भरोसा में लेकर के आगे भी हम भरोसा देते हैं कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है।
और अब पेश है खेल जगत के समाचार। शनिवार देर रात खेले गए रोमांच से भरे फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर T20 विश्व कप अपने नाम कर लिया। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद मिली इस जीत की खुशी इतनी बड़ी थी कि रात 11:32 पर हार्दिक पांड्या द्वारा फेंकी गई 20वें ओवर की आखिरी गेंद होते ही भारत के कई शहरों, कस्बों और गांवों में लाखों लोगों ने घरों से बाहर निकल आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। लगातार खराब प्रदर्शन करने के बाद कोहली ने फाइनल मुकाबले में 59 गेंदों में 76 रनों की यादगार पारी खेली। अक्षर पटेल ने 31 गेंदों में 47 रन और शिवम दुबे ने 16 गेंदों में 27 रन बनाकर भारत का स्कोर 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 176 रन पहुंचा दिया। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत थोड़ी खराब रही और उसके 2 खिलाड़ी मात्र 12 रन पर आउट हो गए, लेकिन मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी कर उन्हें मैच में वापस ला खड़ा किया। उनकी बदौलत दक्षिण अफ्रीका 16वें ओवर की समाप्ति पर जीत से केवल 26 रन दूर थी, जबकि उसके पास 24 गेंदें शेष थी। लेकिन बाकी बचे 4 ओवर में हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी कर दक्षिण अफ्रीका को जीत से महरूम कर दिया। दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 169 रन ही बना पाई। कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया, जबकि बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।